संयुक्त राष्ट्र रेडियो से पेश है साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। मैं हूं महबूब खान। 16 अगस्त 2019 के इस कार्यक्रम में शामिल हैं: हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों में हिंसा और नुकसान पर चिंता, सभी पक्षों से संयम की अपील। रोहिंग्या शरणार्थियों की पूरी एक पीढ़ी की शिक्षा जरूरतों और उम्मीदों पर खतरा। जिनेवा संधि की 70वीं वर्षगांठ पर इंसानी बर्ताव पर फिर से जोर। संयुक्त राष्ट्र वॉलंटियर्स किस तरह फायदा पहुंचा रहा है देशों और समाजों को, एक इंटरव्यू। नवीन सोच को बढ़ावा देने के लिए यूएनडीपी की चर्चा फॉर चेंज, सुनिएगा एक रिपोर्ट। और स्कूलों और समुदायों में किस तरह फैल रही है टिकाऊ विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता, यूनिसेफ की एक युवा चैंपियन मेहर ठुकराल से खास बातचीत। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आएं। पता है news.un.org/hi। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशलेट ने हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताते हुए कहा है कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की निंदा करती हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से संयम बरतने का आग्रह करते हुए प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है कि मांगें शांतिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त की जानी चाहिए। जिनेवा में यूएन मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,
The High Commissioner is concerned by the ongoing events in the Hong Kong Special Administrative Region and the escalation of violence that has taken place in recent days.
रूपर्ट कॉलविल कह रहे थे कि मानवाधिकार उच्चायुक्त स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में जारी घटनाक्रम और हाल के दिनों में वहां हिंसा बढ़ने पर चिंतित हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने किसी भी प्रकार की हिंसा या संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने की निंदा की और प्रदर्शनों में शामिल लोगों से अपील भी की कि अपने मत को शांतिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करें। जिनेवा में यूएन मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल के शब्द। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने हांगकांग प्रशासन और वहां के लोगों से खुले माहौल में समावेशी संवाद स्थापित करने की अपील की ताकि सभी मुद्दे शांति से सुलझाए जा सके। हांगकांग में कुछ महीने पहले एक नए कानून का प्रस्ताव दिया गया था जिसके जरिए लोगों को चीन प्रत्यर्पित करने और उन पर मुकदमा चलाने की व्यवस्था का प्रावधान है। इस बिल के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए जिसके बाद उस प्रस्तावित कानून को जून में निलंबित कर दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं है और उसे आधिकारिक रूप से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हांगकांग का नियंत्रण चीन सरकार के हाथों में आने के बाद वहां एक देश दो प्रणाली के रूप में प्रशासन चलाया जाता है। चीन सरकार के नियंत्रण में होने के बावजूद हांगकांग में वोटर अपनी विधान परिषद खुद चुनते हैं। प्रत्यर्पण बिल के मुद्दे पर शुरू हुए प्रदर्शनों के जरिए लोग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में रह रहे स्थानीय लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या शरणार्थी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जिस वजह से एक पूरी पीढ़ी में हताशा घर कर रही है और आशाएं धूमिल होती नजर आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने कहा है कि इस पीढ़ी की उम्मीदों पर खरा उतरने के काम में विफल होने का जोखिम कोई विकल्प नहीं है। वर्ष 2017 में म्यांमार से जान बचाने के प्रयासों में 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों ने बांग्लादेश में शरण ली थी और इस पलायन को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर यूनिसेफ की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें शिक्षा और कौशल विकसित करने के प्रयासों में तत्काल निवेश पर बल दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर का कहना है कि सिखाने और प्रशिक्षण देने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना एक बड़ा काम है और ये सभी साझेदारों के समर्थन से ही संभव हो सकता है, लेकिन एक पूरी पीढ़ी के बच्चों और किशोरों की आशाएं दांव पर लगी हैं और इस काम में विफल नहीं हुआ जा सकता। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि सीखने के अवसरों के अभाव में रोहिंग्या युवा नशीली दवाओं और तस्करों के चंगुल में फंस जाते हैं, जो हताश लोगों को बांग्लादेश से बाहर ले जाने की पेशकश करते हैं। महिलाओं और लड़कियों को रात में उत्पीड़न और शोषण का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए यूएन एजेंसी का लक्ष्य युवक और युवतियों को शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे कई जोखिमों से बच सकें। इनमें लड़कियों की कम उम्र में शादी जैसी समस्या भी है। बांग्लादेश में कुटुपालोंग शिविर में 6 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा हजारों लोगों ने म्यांमार के कॉक्सिस बाजार में कई शिविरों में शरण ली हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसियों ने अक्सर ध्यान दिलाया है कि रोहिंग्या समुदाय के लोग बेहद जोखिम भरे हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। मानसून की बारिश से बांस और तिरपाल से बनाए गए अस्थायी शिविरों के ढहने का खतरा बना रहता है, जिसके घातक परिणाम सामने आते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक वर्ष 2019 में 21 अप्रैल और 10 जुलाई के बीच मानसून की वजह से शरणार्थी शिविर में 6 बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हुई और 42 घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए म्यांमार लौटने के अनुकूल हालात अब भी नहीं बन पाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे शरणार्थी संकट लंबा खिंच रहा है, बच्चे और युवा सिर्फ बुनियादी जरूरतों के पूरा होने से आगे कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। वे गुणवत्तापरक शिक्षा चाहते हैं जिससे उनके लिए आशावान भविष्य का रास्ता तैयार हो सके।
संघर्ष और युद्ध वाले क्षेत्रों में घायल लोगों के अधिकारों की हिफाजत सुनिश्चित करने वाली जिनीवा कन्वेंशन के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि इस संधि ने सशस्त्र संघर्षों की क्रूरता को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वजूद में आई संधि ने युद्ध और संघर्ष के माहौल में इंसानी बर्ताव के आधुनिक व अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इस संधि में 4 कन्वेंशन और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
मानवीय बर्ताव के इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर 12 अगस्त 1949 को सहमति हुई और कुछ अपवादों को छोड़कर 1992 देशों ने इस संधि को मंजूरी दी थी। पोलैंड के विदेश मंत्री जासेक जापुतोविच ने कहा कि इस संधि को दुनिया के लगभग हर देश ने मंजूरी दी है और स्वीकार किया है और इसमें कानूनी और सैद्धांतिक मानक शामिल किए गए हैं। जिनीवा संधि को परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के रूप में भी मान्यता मिली है जिन्हें सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया गया है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त महीने के लिए पोलैंड के पास है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि जिनीवा संधि किसी बहुपक्षीय सहमति का बहुत नायाब नमूना पेश करती है। जिनीवा संधि में अन्य प्रावधानों के अलावा सशस्त्र संघर्षों के दौरान नाजुक हालात का सामना करने वाले लोगों और समूहों की सुरक्षा के मानक निर्धारित हैं। इनमें युद्धों और सशस्त्र संघर्षों में घायल और बीमार लोगों, युद्धबंदियों, आम लोगों और कब्जा किए हुए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए मानक तय किए गए हैं। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि चूंकि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कुछ देशों द्वारा अमल नहीं करने के गंभीर नतीजे भुगत चुका है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत बनाना हमेशा ही उनके देश की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के क्षेत्र में भी अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझता है। मौजूदा दौर में युद्धों और संघर्षों में मानवीय जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि देशों के सशस्त्र बल और निजी तौर पर काम करने वाले सशस्त्र गुट सभी तमाम नियम और कानूनों का सख्ती से पालन करें। उनके मुताबिक अगर मौजूदा कानूनों और नियमों का पालन किया जाए तो सशस्त्र संघर्षों में होने वाले भारी इंसानी नुकसान और तकलीफों से बचा जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों और सिद्धांतों के जरिए समुदायों, समाजों और देशों को फायदा पहुंचाने वाले संगठन यूएन वॉलंटियर्स ने भारत में भी काफी काम किया है। ये संगठन न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के लिए वॉलंटियर्स मुहैया कराता है बल्कि स्थानीय सरकारों के कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए भी सहयोग देता है। भारत में यूएन वॉलंटियर्स के कार्यक्रम अधिकारी अरुण सहदेव से दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने विशेष बातचीत की।
यूएन वॉलंटियर प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रोग्राम है जिसमें सभी देशों में संयुक्त राष्ट्र के संस्थाओं को वॉलंटियर्स दिए जाते हैं और जो मेंबर स्टेट हैं यूएन के उनको भी वॉलंटियर्स प्रदान किए जाते हैं और औसतन हर साल करीब 8,000 यूएन वॉलंटियर हमारे पीस और डेवलपमेंट जो शांति और विकास के कार्यक्रम होते हैं उसमें अपना योगदान देते हैं।
तो हमारे देश की 65% आबादी युवा है, लेकिन इस युवा शक्ति का फायदा कैसे उठाया जाए जिससे इसे डिविडेंड मिले और राष्ट्र के निर्माण में मदद हो, ये कैसे इंश्योर करते हैं?
युवा जो हैं उनके पास काफ़ी एनर्जी होती है और वो उस एनर्जी को आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ जा सकता है। तो पॉजिटिव एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए वॉलेंटियरिंग एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो जो वॉलेंटियर्स हैं वो राष्ट्र निर्माण में काफ़ी योगदान देते हैं और इस पूरे जो प्रोसेस है उसके दौरान उनका खुद का विकास होता है।
58 जिलों में आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं भारत सरकार के साथ मिलकर, तो ये किस तरह के कार्यक्रम हैं और क्या उनका असर दिखाई दे रहा है?
करीब 8,000 से ज़्यादा युवा मंडल बनाए गए हैं, उसमें करीब 2,00,000 से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा गया है। हर साल करीब हम लोग 2.25 लाख लोगों तक पहुँचते हैं और भारत सरकार के जो भी नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन के अंदर है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है और जो अभी जल शक्ति की बात हो रही है, तो इन सब को जो गांव के स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे वॉलेंटियर हैं युवा और युवती, पर्टिकुलरली जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कई जगह आप देखेंगे कि वो तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप हम कहते हैं उसको कैसे तोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे सामाजिक जिसको दुर्गुण कह सकते हैं उनको दूर करने के लिए ये वॉलेंटियरिंग के माध्यम से काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा।
तो जो NSS और NYKS के साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसमें उसकी क्या
जी, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि पहले जो है 30-30 युवा लेंगे और वॉलेंटियर इन 5 जिलों में और 150 युवा वॉलेंटियर जिसको यूथ एडवोकेट कर रहे हैं, वो 150 सोशल एक्शन प्रोजेक्ट जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो कमियां हैं उस उन जिलों में उनको उनके आधार पर वो एक एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एक साल के लिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन बनाएंगे, उसमें कम्युनिटी से उनका इंटरेक्शन होगा, कम्युनिटी के साथ मिलकर वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो इस बार का जो युवा दिवस का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, उसे UNV के जरिए किस तरह से सार्थक किया जा रहा है?
देखिए, एक तो थीम बहुत ही सही समय पे भारत में आया है जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारे कंसल्टेशन में है जिसमें बहुत सारी चीजों को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो एक हमारे लिए मौका भी था। तो ये हम लोग का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी बढ़ाई जाए ताकि सभी लोग जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ सकें और उन्हें मेनस्ट्रीम में आ सकें, वो बहुत वंचित रह जाते हैं जो साइड में है मार्जिन में है, ऐसे युवा युवती जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है उनको हम कैसे जोड़े, तो ये हमारा ट्विन ऑब्जेक्टिव है।
तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर UNV का संदेश क्या है?
हमारा संदेश ये है कि आप जो युवा हैं वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लगाएं और जो निगेटिव एनर्जी है उसको निकालें और देश के राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहभागिता करें और देश का निर्माण करें।
UN वॉलंटियर्स के भारत में कार्यक्रम अधिकारी अरुण सहदेव से खास बातचीत। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने नवीन विचारों और संसाधनों के फिर से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत में चर्चा फॉर चेंज का आयोजन किया। इसमें ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया जिन्होंने कूड़ा समझकर फेंक दी जाने वाली चीज़ों से रिसाइकलिंग यानी उन्हें फिर से इस्तेमाल करने के नायाब रास्ते निकाले हैं। एक बार फिर दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
संवाद से दुनिया बदल सकती है, ऐसा संवाद शुरू करने का साहस दिखाओ जो महत्वपूर्ण हो। आओ बात करें, कार्रवाई करें और बदलाव लाएं। कुछ ऐसी ही भावना के साथ सोमवार को राजधानी दिल्ली में चर्चा फॉर चेंज शुरू हुई।
इस अवसर पर भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा ने अपने अनुभव बांटते हुए लोगों को जलवायु परिवर्तन की गंभीरता से आगाह कराया।
जलवायु परिवर्तन आज का सच है और इससे निपटने के लिए हमें मिलकर कुछ करने की जरूरत है। अगर भारत सही कदम उठाता है तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दुनिया उसका अनुसरण करेगी। इसका मतलब है कि आप अग्रणी भूमिका में हैं।
ये थे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा के शब्द।
जोश टॉक्स के सहयोग से आयोजित इस चर्चा में कुछ ऐसे युवा अन्वेषक शामिल थे जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने स्तर पर कुछ खास करने की ठानी। चक्र इनोवेशन के अर्पित धूपर एक ऐसे ही युवा इनोवेटर हैं। एक दिन गन्ने का जूस पीते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उसकी मशीन का डीजल जनरेटर कितना ज़्यादा कार्बन हवा में फेंक रहा था। फिर मालूम हुआ कि कुल वायु प्रदूषण का लगभग 16% हिस्सा डीजल जनरेटरों से फैलता है। वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए अर्पित ने एक ऐसी तकनीक इजाद की जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को स्याही और पेंट में बदलकर इस्तेमाल में लाया जाता है। बेकार हुए कार्बन का इस तकनीक के जरिए दोबारा इस्तेमाल तो हुआ ही, साथ ही इसके हवा में शामिल होकर प्रदूषण फैलाने से भी बचाव हो गया। अर्पित ने युवाओं को जलवायु परिवर्तन की समस्या पर ध्यान देकर कुछ सकारात्मक करने का आह्वान किया।
So how many of you here think that, you know, there are huge problems like traffic jam?
आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि यातायात जाम, वायु प्रदूषण, पानी की कमी जैसी समस्याएं सिर्फ सरकार या संयुक्त राष्ट्र की समस्याएं हैं और इनके हल निकालना सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी है? लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हमें शिकायत करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमें लगता है कि इतना बड़ा काम है, हम अकेले कैसे कर सकते हैं, लेकिन कोई काम इतना बड़ा नहीं होता।
चक्र इनोवेशन के अर्पित धूपर के शब्द। हर साल दिल्ली के आसपास के राज्यों पंजाब और हरियाणा में खेती से बचा करीब 2 करोड़ टन कूड़ा जला दिया जाता है, जिससे आसपास के राज्यों के 25 लाख लोग प्रदूषण की मार झेलते हैं। इसमें पराली को जलाया जाना भी शामिल था। क्रिया लैब्स के संस्थापक प्राचीर दत्ता ने इसी कृषि बायोमास को पर्यावरण अनुकूल विधि से गलाकर डिस्पोजेबल कप, कागज और जरूरत के दूसरे सामान बनाने का बीड़ा उठाया।
हमने ये भी समझा कि उन किसानों के पास उस पराली को इस्तेमाल करने या उसके भंडारण के लिए कोई वजह नहीं है, तो इसलिए वो इसे जला देते हैं। हम वापस IIT लैब में गए और इत्तेफाक है कि हम उस समय कागज की रिसाइकलिंग पर काम कर रहे थे, तो फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद हम ये डिस्पोजेबल बनाने में कामयाब हुए। ये उत्पाद ऐसा था जो लगा कि ये बिक सकता है।
प्रिया लैब्स के संस्थापक प्राचीर दत्ता के शब्द। वक्ताओं के प्रेरणादायक भाषणों के बाद एक पैनल चर्चा हुई जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई अहम सुझावों पर विचार विमर्श हुआ और वहां मौजूद लोगों के सवालों के जवाब भी दिए गए।
UNDP द्वारा आयोजित चर्चा फॉर चेंज पर दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास लक्ष्यों के जरिए विश्व में ऐसे बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है जिनसे हर इंसान की जिंदगी बेहतर हो सके। इसके लिए पहला काम तो यही है कि टिकाऊ विकास लक्ष्यों यानी SDGs के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और उनके जरिए समुदायों, समाजों और देशों में व्यापक बदलाव लाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी स्कूलों में छात्रों को सक्रिय बनाकर ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही एक यूनिसेफ युवा चैंपियन मेहर ठुकराल से हमने न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में बातचीत की।
सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और ये बताइए कि यहाँ आपका कैसे आना हुआ।
मेरा नाम मेहर है। हम एक्चुअली स्कूल ट्रिप के दौरान आए हैं टू प्रमोट द SDGs, एंड हमारे स्कूल में SDGs को बहुत सीरियसली लिया जाता है। सिंगापुर में जो प्राइवेट स्कूल की कम्युनिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ावा देती है SDGs को, तो हमारा स्कूल हर साल 2 बच्चों को पिक करता है एंड हम यूनिसेफ के साथ हम इधर आते हैं टू हेल्प लर्न अबाउट देम एंड देन फर्दर हम वापस जाकर वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम।
तो यूनिसेफ ने क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ की जिससे आपको सेलेक्ट किया गया?
सो हमारे स्कूल में हमारी जो हेड टीचर है जो यूनिसेफ के अफिलिएशन में रहती हैं, उन्होंने एक लेटर डाला Grade 7 से Grade 12 के बच्चों को आस्किंग कि अगर हमें साइन अप करना है हमें इनिशियली एक वीडियो मैसेज भेजना होगा एक्सप्लेनिंग हमारा जो पास्ट था लाइक द एक्सपीरियंस वी हैव SDGs के साथ एंड हमें लेटर भी लिखना था एक्सप्लेनिंग हमें क्यों लगता है हम इस रोल के लिए अच्छे हैं। हमारे लिए स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन सिखाया जाता है कि हमारी फैमिलीज हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो पर्सनली मेरे मॉम, डैड, मेरे दादा दादी, नाना नानी और माय इमीडिएट फैमिली हु आर माय स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, वो मुझे पुश कर रहे हैं टू स्टडी फर्दर, टू गो ऑन एंड डू व्हाट आई लव रादर देन टू गो इनटू समथिंग बिकॉज़ समवन इज पुशिंग मी इनटू इट।
जो आपका पसंदीदा एरिया है आपके स्टडीज में या जिस एरिया में आप करियर बनाना चाहते हैं, आप ग्रोथ करना चाहते हैं, उसमें आपको अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है?
मैं ज़्यादा भारत में रही नहीं हूँ, मैं 3 साल की थी जब मैं गई थी, बट मेरे मॉम एंड डैड की स्टोरी से मैंने सुना है कि पेरेंट्स उन्हें ज़्यादा पुश कर देते हैं जो वो चाहते हैं. तो मुझे लगता है पेरेंट्स को ज़्यादा ओपन माइंडेड होना चाहिए, फैमिलीज़ को ओपन माइंडेड होना चाहिए कि जो भी बच्चा करे दे शुड बी हैप्पी, उन्हें खुश रहना चाहिए. तो आप उन्हें बढ़ावा दें कि जो आप चाहते हैं वो आप करें.
ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं उनकी शायद ये फिक्र भी रहती है इसके पीछे कि बच्चे इस तरह का करियर बनाएं कि जहाँ उनको अपनी दुनिया बनाने में मदद मिले. जाहिर सी बात है कि धन भी चाहिए हमको, मनी भी अर्न करनी होती है. तो ये जो थॉट है क्या कुछ इसमें रिलेवेंस है?
हाँ जी, इट्स कम्प्लीटली रिलेवेंट बिकॉज ऑफ कोर्स हमें धन कमाना पड़ेगा, हमें पैसे कमाने पड़ेंगे टू सर्वाइव इन द यूनिवर्स. मनी के बगैर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वोंट फंक्शन. तो आई कम्प्लीटली अग्री पेरेंट्स के साथ, बट आई थिंक अगर आप बच्चों को यंग एज में एक्सपोजर दें, क्योंकि मैं अभी 16 साल की हूँ बट मैं ऑलरेडी बहुत जगह पे काम कर चुकी हूँ, वॉलंटियर कर चुकी हूँ, लोगों से बात करके मुझे पता चला है कि उनके इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता है, कैसे लाइफस्टाइल चॉइसेस करनी पड़ती हैं, आपको कितने पैसे कमाने पड़ते हैं टू सर्वाइव. तो आई कम्प्लीटली अग्री विद द पेरेंट्स, बट मुझे लगा कि अगर आप उन्हें यंग एज में एक्सपोजर देंगे तो वो अपने मिस्टेक्स से सीखेंगे.
यूनिसेफ की एक युवा चैंपियन मेहर ठुकराल से बातचीत. तो आज के बुलेटिन में इतना ही. महबूब खान को इजाज़त दीजिए, अगले कार्यक्रमों में आपसे फिर मुलाकात होगी. विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें, news.un.org/hi.